पेज नंबर 88। हमारे देश में वैसी ही विकट समस्याएं स्वतंत्रता देवी के आगमन के साथ साथ आ उपस्थित हुई हैं। आज हर साल 11 करोड़ 80 लाख मन अन्न का तोड़ा है, जिसे हम बाहर के देशों से मंगाकर पूरा कर रहे हैं। कब तक हम हर साल अरब से अधिक रुपया यो बाहर भेजते रहेंगे? और भेजना चाहें भी तो कब तक हम ऐसा करने की क्षमता रखेंगे? फिर 11 करोड़ 80 लाख मन से काम थोड़े ही चलने का। हर साल हमारी जनसंख्या 50 लाख के हिसाब से बढ़ती जा रही है, जिसका अर्थ होता है 4.5 करोड़ मन गल्ला हर साल ज़्यादा बाहर से मंगाना। हम बिल्कुल खतरे में हैं, पानी नाक के नज़दीक पहुंच रहा है। अगर हमने इसका रास्ता चंद वर्षों में नहीं निकाला तो परिणाम भयंकर होगा। बंगाल ने जो 50 लाख भूख के लिए बलिदान दिए, उनका कई गुना ज़्यादा भारत को देना पड़ेगा। कृषि उपयोगी सारी भूमि को खेतों में परिणत करना, उपज बढ़ाने के लिए खाद्य तथा सिंचाई का बड़े विशाल पैमाने पर इंतजाम करना और खेती के साइंस का उपयोग करके आज के उपज को बढ़ाना, यह सब हमें तत्काल करना पड़ेगा। स्मरण रहे, हमारे धान और गेहूं के खेत आगे बड़े देशों की अपेक्षा सिर्फ पांचवा या छठा हिस्सा ही फसल पैदा कर रहे हैं, लेकिन यह सब करके हम अपनी जनता को सिर्फ भूख से बचा सकते हैं। उनके जीवन के मान, उनकी वार्षिक आय को एक स्वतंत्रता और शक्तिशाली राष्ट्र के योग्य नहीं बना सकते। यह काम तो तभी हो सकता है जब देश का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो। भूमि के अंदर दबी अपार खनिज संपत्ति और नदियों में बह जाती अनंत विद्युत शक्ति को करोड़ों करोड़ों हाथों और मस्तिष्क की सहायता से काम में लाया जाए। किंतु वैज्ञानिक खेती और देश का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तभी हो सकता है जबकि साइंस और शिक्षा आम और सार्वजनिक हो जाए। सोवियत की कायापलट हुई है, उसमें सबसे अधिक उसके 10 लाख इंजीनियरों का हाथ है। हमें उससे भी ज़्यादा इंजीनियरों की ज़रूरत है। सारी जनता को शिक्षित करना हमारे लिए कोई शौकीनी की बात नहीं, यह तो हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। इसे हम यदि 10-15 वर्षों में पूरा करना चाहते हैं तो मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। अपरिचित भाषा सिखलाकर ज्ञान देने की शर्त हमें हरगिज नहीं पेश करनी चाहिए। जनता की बोलियों को उच्चारणानुसार लिपि दीजिए और सीधे जन बोलियों में वैज्ञानिक और दूसरे साहित्य को तैयार कीजिए। इसके लिए सर्वथा उपयुक्त लिपि नागरी हमारे पास है। आखिर कौन सी बुद्धिमानी है कि मैथिली, अवधी, भोजपुरी और ब्रजभाषा जैसी जन बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनने से रोका जाए? अनेक भाषाओं को दबाकर भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक जुए के नीचे जोतना सामंतशाही आदर्श भले ही हो सकता है, लेकिन जनता के राज्य के दम भरने वाले कैसे उसे अपनाने पर जोर दे सकते हैं? खासकर आज की परिस्थितियों में, जबकि जनता की आम शिक्षा रोटी कपड़े के सवाल को हल करने में अनिवार्य शर्त बन गई है। हमारे राष्ट्रीय कर्णधार इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। अभी वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और मराठी भाषा भाषी प्रांतों को भी स्वतंत्र प्रांत मानने में आनाकानी कर रहे हैं। फिर बिहार युक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पूर्वी पंजाब को मातृभाषाओं के अनुसार बांटने के लिए कोई सूझ का कदम वे उठाएंगे, इसकी आशा नहीं मालूम हो रही। मुश्किल तो यह है, वे इसे अनुभव नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करके वे मातृभाषाओं पर कोई उपकार नहीं करेंगे। देश को दरिद्रता के गर्त से निकाल कर समृद्ध बनाने के लिए मातृभाषाओं की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि भारत के करोड़ों हाथों और मस्तिष्क की। यह बात हम जितना ही शीघ्र समझ लें उतना ही देश का कल्याण है। 6-6 करोड़ और 3-3 करोड़ की जनता के मंत्री और गवर्नर बने रहने की अहम मान्यता एवं लोभ की पूर्ति कुछ व्यक्तियों के लिए भले ही हो संभव हो, किंतु इससे हमारी नैया भंवर से नहीं निकल सकती। 11 करोड़ 80 लाख मन अनाज का सालाना घाटा ऊपर से 4 करोड़ 50 लाख मन घाटे का हर साल और बढ़ते जाना, 50 लाख हर साल नए मुंह का बढ़ना, और देश का आज भी दुनिया के सबसे दरिद्र देशों में होना, ये बातें हैं जिन पर आज हर समझदार भारतीय को गौर करना और हल ढूंढना है। इसलिए मातृभाषाओं के अनुसार प्रांतों को फिर से विभाजन आज की अनिवार्य आवश्यकता है। अगर आधुनिक विशाल प्रांतों के गद्दीधर इतना नहीं करना चाहते, तो कम से कम कमिश्नरियों को हटाकर एक एक मातृभाषा के अनुसार एक एक उपप्रांत ही बना दें। हाँ, वहाँ मातृभाषा कोई शिक्षा और कचहरियों का माध्यम बनाना होगा। मातृभाषा अनुसारी प्रांतों में हिंदी को कोई हानि नहीं, वह संपूर्ण भारत संघ की अनिवार्य राष्ट्रभाषा रहेगी। अंग्रेजी को और कितनी ही शताब्दियों तक भारतीय संघ की भाषा बनाए रखने का मंसूबा बांधने वाले वही हो सकते हैं जो सोचने की सारी शक्ति खो चुके हैं। जिस तरह सोवियत संघ ने देश में तीसरे दर्जे से संघ की भाषा का पठन पाठन अनिवार्य कर दिया, वैसे ही अपने यहाँ हिंदी को अनिवार्य कर देना है। इसका विरोध करने वाले संघद्रोही होने के लांछन से बच नहीं सकते। सारे भारत संघ की भाषा हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो कि हिंदी और अरबी दोनों लिपियों में लिखी जाए। यह भी कुछ लोग कह रहे हैं, और सांप्रदायिकता नहीं, राष्ट्रीयता के नाम पर। हमें सोचना है कि कहाँ तक यह व्यवहार्थ और राष्ट्रीय सम्मत है। पहले हमें साफ समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी कहने से एक भाषा का मान जो कराया जाता है, वह बिल्कुल गलत है। वस्तुतः वहाँ उर्दू, हिंदी, इन दो भाषाओं को एक शब्द की आड़ में लाया जाता है। हिंदी उर्दू, चाहे उनका उद्गम शताब्दियों पहले एक रहा हो, और आज भी यदि अरबी के लदे बोझ को हटा दिया जाए तो वह एक है, लेकिन इधर तो वे विकसित होकर दो स्वतंत्र भाषाओं में परिणत हो गई हैं। उर्दू काव्य का पंडित पंत की कविता को नहीं समझ सकता, वैसे ही हिंदी साहित्यज्ञ इकबाल के काव्यों के रसास्वादन में असमर्थ है। क्या इन दोनों भाषाओं को भारत संघ की भाषा स्वीकार कर हम उसे हिमालय से कन्याकुमारी और कलकत्ता से अमृतसर तक सारे लोगों के ऊपर लादना चाहते हैं? अपनी भाषाओं बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, मराठी के साथ साथ उर्दू, हिंदी दोनों भाषियों और लिपियों को करोड़ों जनता को अनिवार्य पढ़ाना दुसाध्य और श्रम तथा समय का अपव्यय है। हम संघ की एक लिपि और एक भाषा ही अपना सकते हैं जो कि अल्पतम समय में साम्य हो। हिंदी नागरी का एक ऐसी लिपि है जिसमें किसी को विवाद नहीं हो सकता। अरबी लिपि, जिसमें कि उर्दू लिखी जाती है, अपने बाहरी दोषों के कारण मुस्लिम मध्य एशिया और तुर्की से हटाई गई, जिसको शुद्धता पूर्वक लिखने के लिए उत्तरी भारत के स्कूलों को 8 साल की शिक्षा भी पर्याप्त नहीं। उस लिपि को संघ की अनिवार्य लिपि बनाना हठधर्मी के सिवा कुछ नहीं। व्यवहार में वह चल नहीं सकती। संगीनों के बल पर उसे 35 करोड़ जनता को पढ़ाया नहीं जा सकता। अब भाषा को लीजिए, सारे भारत के प्रांतों में 90% जनता के लिए हिंदी का पढ़ना लिखना बहुत आसान है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 60-70% संस्कृत शब्द समान हैं। वे असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा भाषियों के पहले ही से परिचित हैं। इसके विरुद्ध उर्दू के 60-70% अरबी, फारसी के शब्द उनके लिए बिल्कुल नए हैं। उर्दू का अपनाना बहुत महंगा सौदा है। डर है कि कहीं दोनों भाषाओं की अनिवार्य शिक्षा के ख्याल से हिंदी को संघ की भाषा मनवाना ही ना खटाई में पड़ जाए। इस झगड़े से बचने के लिए अंग्रेजी को अपनाए रखने की बात 15 अगस्त से पहले भले ही कही जा सकती थी, लेकिन अब उसकी बात करना अरण्य रोदन से बढ़कर नहीं। दोनों लिपियों के झगड़े से बचने के लिए रोमन लिपि की बात चलानी फजूल है। संसार में रोमन लिपि भी सार्वभौम नहीं। रूसी लिपि का भी 20 करोड़ से अधिक आदमी व्यवहार करते हैं। फिर हमारी नागरी लिपि उच्चारण संकेत में कोई दोष नहीं रखती, वह रोमन से भी अधिक साइंस संगत है। कुछ मामूली सुधार से टाइप और प्रेस के लिए भी वह रोमन से अधिक उपयोगी बन सकती। कुछ सज्जनों ने अपने नीम हकीमी का पूर्ण परिचय देते खा घा छा ठा था धा फा भा को वर्णमाला से निकाल उनका काम का गा आदि पर चिन्ह लगाकर देने का प्रस्ताव किया। उन्हें इसमें क्या फायदा दिखता है समझ में नहीं आता। चिन्ह लगाकर अक्षर बनाने की आवश्यकता तब होती है जब उस उच्चारण के लिए कोई वर्ण ना हो। संयुक्त अक्षरों की जगह हलंत अक्षर तथा मात्राओं को आ के ऊपर लगा स्वरों के टाइप को कम करके दूसरे टाइपों के ऊपर लटकने वाली मात्राओं को संकुचित करके हम हिंदी लिपि को आधुनिक यंत्रों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि बना सकते हैं। अब भी वह छाया यंत्रों के लिए उपयुक्त है। यह तो हिंदी की मोनोटाइप और लिनोटाइप का बहुव्यवहार ही बतला रहा है। कहा जाता है उर्दू भाषा और लिपि को भी यदि सारे भारत की भाषा और लिपि नहीं स्वीकारा गया, यानी 35 करोड़ नर नारियों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ाया लिखाया नहीं गया, तो खंडित हिंदुस्तान फिर एक नहीं हो सकेगा। ऐसी एकता का स्वप्न कम से कम गांधीवादियों को तो छोड़ ही देना चाहिए। एकता तभी संभव है जब भारत पूर्णतया समाजवादी हो जाए। वैसे कहने वाले अपने हृदय को टटोल लें कर देखें कि भारत को पूर्ण समाजवादी बनाने के ख्याल के लिए उनके दिल में कितना स्थान है। समाजवाद कायम करने के लिए कटिबद्ध साथियों से कहूंगा कि दो दो भाषाओं और लिपियों को दो प्रांतों युक्त पंजाब और पूर्वी पंजाब से बाहर ले जाकर सारे भारत में फैलाना राष्ट्रीयता के क्षेत्र में सांप्रदायिकता की नींव को मजबूत करना है। सांप्रदायिकता को हमें भुलाना है। हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी धर्म मानना वैयक्तिक बात है, उसे राष्ट्रीयता के क्षेत्र में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि मुस्लिम सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने के लिए आप उर्दू को अपनाने की जिद कर रहे हैं, तो ईसाइयों को रोमन लिपि से भला क्या कसूर किया है जिसमें लाखों बाइबिल छपी और पढ़ी जा रही हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत को मान लेने पर बंगाल गुजरात महाराष्ट्र के भी उर्दू पक्षपाती वहां उर्दू को प्रांतीय भाषा मानने के लिए कहेंगे, फिर आप विरोध में कौन सा तर्क प्रस्तुत करेंगे?